आज प्रथम जुलाई 2020 का दिन आप सब के लिए कल्याणकारी हो। आज मैं आपको कोरोना एक अभिशाप या वरदान, इसके विषय में कुछ अपने विचार प्रकट करके सुनाऊंगी। प्रिय पाठकों, आज हम सब के सामने कोरोना नाम का राक्षस मुंह भरे खड़ा है। जो भी उसके चपेट में आ जाता है उसे वह खा जाता है। अतः सन 2020 का ये वर्ष कोरोना नामक वायरस से बुरी तरह ग्रसित है। मैं अब आपको पिछले 1986 में ले जाती हूँ और वहाँ श्री महाराज जी का एक प्रसंग सुनाती हूँ जो कि कोरोना से जुड़ा हुआ है, जो कि इस महामारी से जुड़ा हुआ है। अप्रैल 1986 का वर्ष है। श्री महाराज जी बैठे हैं, भक्त लोग भी बैठे हैं। इतने में विजय कुमार सूद, जो श्री महाराज जी के अंतंग भक्त हैं और उनकी भक्ति में माता जी आए और बैठ गए। आज विजय कुमार सूद जी का जन्म दिवस है। प्रथम अप्रैल को उनका जन्म दिवस होता है। माता जी तरह तरह के पकवान लाई है और सब भक्तों को खिला रही है। श्री महाराज जी को पहले भोग लगाकर ही माता जी दूसरे भक्तों को भी प्रसाद दे रही है। श्री महाराज जी छोटे बालक की भांति भोजन में दिव्य आनंद ले रहे हैं। उन्होंने स्वयं माता जी की भोजन की टोकरी टिफिन से रोटी निकाली और बड़े चाव से देखने लगे तो माता जी ने कहा, स्वामी जी ये बेड़ुआ भटूरू है, आटा दाल की कचौड़ियां है। श्री महाराज जी ने एक दो टुकड़े खा लिए और बहुत प्रसन्न हुए। पैसे दे माता जी द्वारा घर से लाया गया प्रसाद प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करते हैं। अब श्रीयुक्त विजय सूद से बातचीत होने लगी। तीसरे विश्व युद्ध की बात हुई। फिर श्री महाराज जी ने कहा, भगवान मनुष्य को अच्छा करने के लिए कुछ ऐसा ही करते हैं। देखो विजय, कहीं सूखा पड़ा है, कहीं भारी वर्षा हो रही है। गुजरात में सूखा पड़ा है तो हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा हो रही है। श्रीयुक्त विजय ने कहा, स्वामी जी आजकल ऐसे ऐसे बम तैयार हो गए हैं कि उनका प्रयोग करने से दुनिया घंटे में राख का ढेर बन जाएगी। इस पर श्री महाराज जी ने कहा, अरे विजय महाप्रलय तो अभी नहीं होगी। हाँ, किसी और कारण से काफी संख्या में लोग मरेंगे और कहीं कहीं पर रह जाएंगे। दूर दूर तक लोग देखने को नहीं मिलेंगे। जमीनें और घर खाली पड़ जाएंगे। मनुष्य मनुष्य से दूर भागेगा। तब माता जी ने भी कहा, हाँ स्वामी जी सच, मानव से मानव डरेगा अथवा मनुष्य से मनुष्य डरेगा। श्री महाराज जी ने कहा, बड़ा भयानक समय आने वाला है। उसमें सन 1986 अप्रैल में ही श्री महाराज जी ने भविष्यवाणी कर दी थी, पर मुझे स्वयं को समझ नहीं आया था कि क्या कैसे कौन सी बीमारी आएगी। आज वह सब सच हो गया 34 वर्ष के पश्चात। कल शाकुर ने फोन में कहा, माता जी पिताजी कह रहे हैं श्री गुरु पूजा का कैलेंडर बन गया है, अब सम्मेलन के लिए सब्जेक्ट भी दे दो। मैंने उत्तर दिया ठीक है और 5 विषय उसी में दे दिए, जिनमें एक कोरोना को लेकर ही है। इस बीमारी का नाम कोरोना है। भाई क्यों रोना है? उत्तर है, कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व कही आखा, जो जस कही तसी फल चाखा। ये सब सुख दुख कर्मों का खेल है। हमारी भारतीय संस्कृति में कर्म को प्रधान माना गया है। कहा भी गया है, कर्म गति तारे नहीं करे। राजा हरिश्चंद्र, नहुष, भगवान राम, बड़े बड़े महापुरुष भी कर्मों की गति के अनुसार ही जीवन जीते थे। ये संसार चक्कर कर्मों के अधीन है। ना जाने मनुष्य जाने अनजाने में कैसे कैसे कर्म कर बैठता है और उन कर्मों का फल को भुगताने के लिए भारी से भारी दुख उठाना पड़ता है। ये कर्म भी मनुष्य योनि में ही होते हैं। दूसरी योनियों में जीव को ना तो पाप है और ना ही पुण्य। ये योनियां तो केवल कर्मों का भुगतान ही करती हैं, लेकिन मनुष्य को शुभ अशुभ कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इसी को प्रारब्ध कहते हैं। इन कर्मों का भुगतान अवश्य करना पड़ता है। मान्यता है कि प्रभु इच्छा बिना पत्ता तक नहीं हिलता। प्रभु इच्छा भी मनुष्य को के अपने कर्मों अनुसार ही होती है। प्रभु तो निरपेक्ष है, वह किसी को दुख अथवा सुख नहीं देते। उपनिषद में एक कथा आती है, एक वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी ऊपर वाली शाखा पर बैठा है, बस इधर उधर देख कर चुपचाप छांत बैठा है, वह किसी गुण के अधीन नहीं है। और दूसरा पक्षी उसी वृक्ष की दूसरी शाखा पर बैठा है, जो वृक्ष में लगे खट्टे मीठे फल खा रहा है और सुख दुख में घिरा हुआ है। जो फल खाता है वही दुखी है, दूसरा नहीं। संसार का दूसरा नाम है संसार प्रपंच। अतः इस संसार में पांच प्रपंच है, राग द्वेष अस्मिता और अज्ञान तथा अविनिवेश। जब तक जीव संसार के प्रपंच में फंसा रहता है, तब तक सच्चा सुख नहीं मिलता उसे। संसार प्रपंच से जब हमारा लेखा जोखा खत्म हो जाता है, तब हम जीवन मुक्त हो जाते हैं। अगर संसार की दृष्टि से देखा जाए तो कोरोना नाम की बीमारी या वायरस तो इस शताब्दी का भयानक अति भयानक रोग तो मानवता के लिए अभिशाप ही बना हुआ है। कई घर खाली हो गए हैं, शमशान घाट पर लोगों के ढेर लगे, लाशों के ढेर लगे हैं, दफनाने को कब्रिस्तान भी कम पड़ गया है। कहीं माँ चली गई तो कहीं बालक, कहीं आदमी अकेला ही रह गया, दूसरा कोई बात करने को भी है ही नहीं। देखते ही देखते सब भैरव छूट गया, मरने की कोई तैयारी नहीं, लेकिन फिर भी मानव मरने को बाध्य हो गया है। डॉक्टर वैद्य भी हार गए हैं, इसकी कोई दवा नहीं। यहाँ तक बीमार लोगों की देखभाल करने वाले मनुष्य, युवक और युवतियाँ, पुलिस और डॉक्टर नर्सें भी इस कोरोना की शिकार बन गई हैं। इसी मरीज का इलाज करना भी मौत ही है। ये बीमारी किसी एक शहर की नहीं, किसी एक देश की नहीं, ये तो विश्वव्यापी बीमारी है। भूमंडल को मानो त्रास लग गया है या फिर कोई महा अभिशाप। कोरोना युग में मानव डरते डरते जीता है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। वैसे तो कहावत भी है, डेथ कीप्स नो कैलेंडर। मौत में भगवान को कभी नहीं भुलाना चाहिए, लेकिन इस युग में मानव को ना तो भगवान का डर था ना ही मौत का। मनुष्य स्वच्छंद होकर विचर रहा था, ना दया रही थी ना धर्म। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब लोग घटने प्राण। दया तो दूसरों पर आती है, इसलिए दया की बात तो दूर है। मनुष्य अपने कर्तव्य पथ से विमुख हो गया है। माता पिता का तथा गुरुजनों का कोई सम्मान नहीं, स्त्री जाति का मान नहीं, स्त्री को काम पूर्ति का साधन मानना बहुत भूल रही है। क्या क्या गुनाऊ, आप सब भली भांति परिचित है कि आश्रम प्रथा भी समाप्त हो गई है। सब आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास नाम मात्र को ही रह गए हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम के मर्यादा खत्म हो चुकी है, गृहस्थी को उत्तरदायित्वों का भान नहीं, वानप्रस्थ प्रथा तो मिट चुकी है। संन्यास धर्म को आडम्बर का रूप धरकर शांत से विचरण कर रहा है। ये चार आश्रम बिगड़ गए हैं। वर्ण अवस्था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्ध भी नाम को ही है। धर्मचित होने से पृथ्वी पर से देवता भी अपना अपना स्थान बदल देते हैं। कहते हैं फिर पितर भी पितर लोग से गिर जाते हैं। पैतृक शब्द आदि का भी ज्ञान नहीं, सामाजिक व्यवस्था नाम मात्र को नहीं। इस कलयुग में मनुष्य भी कलात्मक हो गया है। भावनाओं और संवेदनाओं का कोई स्थान नहीं, स्वार्थ का ही बोलबाला हो गया है। जब विश्व समाज इस हद तक गिर जाता है और पतन के मार्ग पर चलता है, तो जरूरी है भगवान कुछ अच्छा करने के लिए कुछ इस प्रकार की भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक दुख अवश्य देते हैं, जिससे मनुष्य गुरु तथा संकीर्तन या स्वार्थी संकीर्ण तथा स्वार्थी रास्ते को छोड़कर उपकार की राह पर चलने लगता है। कोरोना प्रकृति के लिए तो वरदान ही बना। विश्व में लॉकडाउन होने से प्रकृति वैसे ही शुद्ध हो गई जैसे वो पूर्व में थी, बिल्कुल साफ सुथरी। बेजनत गाड़ियों का धुआं, पॉल्यूशन आदि सब खत्म हो गया। पृथ्वी पर बहने वाली नदियां भी, जिनका पानी दूषित हो चुका था, पुनः स्वच्छ हो गई है। वसुंधरा प्रकृति मानो नहा धोकर स्वच्छ होकर बैठ गई है और अपने प्रभु परमात्मा के दर्शनों के लिए आतुर है। पक्षियों का चहचहाना पुनः आरम्भ हो गया। पक्षी भी जहरीली गैस से तड़प तड़प कर मरते थे। जानवरों के लिए भी स्वच्छ वातावरण मिला है। प्रकृति का रूप यह अभिशाप भी वरदान है। मनुष्य के लिए भी ये वरदान बन सकता है, अगर मनुष्य अपनी पुरानी गलतियों को सुधार करके पुनः मानवता के लिए जीना आरंभ करे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय माता दी।